ॐ भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचित् उपासना ब्रजवधो वर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेम पूमातो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादर नापरः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की भुवन मंगल हरि नाम की कार्तिक मास की हरे कृष्णा। यह हमारा परम सौभाग्य है कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के द्वादशी कल हम बहुत पवित्र देव उत्थान एकादशी मनाएं। चार महीने से भगवान सोए थे, कल उठे, इसलिए कहते हैं ना देव उत्थान एकादशी। आज द्वादशी है, बड़ा ही शुभ दिन है। तो श्री वृंदावन धाम में जो सर्वोत्कृष्ट धाम है, यहाँ हम आज प्रातःकालीन मुहूर्त में श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ धर्मात्मा प्रभु से कि ये सौभाग्य हमें दिया, और आप सभी ब्रजवासियों को जो यहाँ नित्य ब्रज में रहते हैं और जो भी बाहर से आए हैं, आप सब समय निकाल के आए श्रवण करने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद पांच अध्याय चार शीर्षक है भगवान ऋषभ देव के लक्षण, श्लोक संख्या 4। ये श्लोक कोई छंद में नहीं है तो आवृत्ति करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे हम गीता के श्लोक पढ़ते हैं या भागवतम के श्लोक पढ़ते हैं तो अनुष्टुप छंद में रहता है तो बहुत आसान होता है आवृत्ति करना, अभ्यास भी करना, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो आप सुनिए, पीछे भी दोहराइए तो एक बार कम से कम। नाभिस्तु यथाभिलषितम् सुप्रज्जस्वम् अवरुद्ध्य अतिप्रमोद भरबिह्वलः गदगद अक्षरया गिरा स्वैरम् गृहीत नरलोक सधर्मा भगवन्तं पुराण पुरुषं माया विलसित मतिमर्ष तात इति सानुरागं उपलालयन पराम निवृत्तिं उपगतः। नाभि ही राजा नाभि तू निश्चय ही यथा अभिलाषितम् इच्छानुसार सुप्रजस्त्वम् अत्यंत सुंदर पुत्र अवरुद्ध्य पाकर अति प्रमोद अत्यधिक प्रसन्नता भर की अतिशय बिह्वलः विभोर होकर गदगद अक्षरया आह्लाद में शब्द न निकलने से गिरा वाणी से स्वैरम स्वेच्छा से गृहीत स्वीकार किया नरलोक सधर्मम मनुष्य की भांति आचरण करके भगवंतम श्री भगवान को पुराण पुरुषम जीवों में सर्वाधिक वय वाले माया योग माया से विलसित मोहग्रस्त मति ही उसकी मति बच्चा प्रिय पुत्र तात मेरे प्रिय इति इस प्रकार स अनुरागम अत्यंत प्यार सहित उपलालयन लालन पालन करते हुए पराम दिव्य निर्वृतिम आनंद उपगतः प्राप्त किया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर राजा नाभि दिव्य आनंद के कारण बिह्वल और पुत्र के प्रति अत्यंत वत्सल हो उठे। उन्होंने गदगद वाणी से उसे मेरे प्रिय पुत्र मेरे प्यारे लाडले शब्दों से संबोधित किया। ऐसी बुद्धि योग माया से उत्पन्न हुई जिसके कारण उन्होंने परम पिता भगवान को अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। ईश्वर भी अपनी परमेच्छा के कारण उनके पुत्र बने और सबों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे कोई सामान्य मनुष्य हो। इस प्रकार वे अपने दिव्य पुत्र का बड़े ही लाड़ प्यार से लालन पालन करने लगे और वे दिव्य आनंद हर्ष तथा भक्ति से भाव विभोर हो गए। तात्पर्य यहां माया शब्द का प्रयोग मोह के अर्थ में हुआ है। भगवान को अपने पुत्र रूप में पाकर महाराज नाभि सचमुच मोहग्रस्त थे, किंतु यह दिव्य मोह था। यह मोह आवश्यक है क्योंकि बिना इसके कोई क्यों परम पिता को अपना पुत्र स्वीकार करने लगा। भगवान अपने एक भक्त के पुत्र रूप में वैसे ही प्रकट होते हैं जिस प्रकार श्री कृष्ण नंद महाराज और यशोदा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। ये भक्त अपने पुत्र को भगवान रूप में कभी भी नहीं सोच सकते, क्योंकि ऐसा करने से पितृ प्रेम में बाधा उत्पन्न होती है। हरे कृष्णा। तो ये पांचवा स्कंद का बहुत सुंदर प्रसंग है। इस देश का नाम है भारतवर्ष, है ना? लेकिन इससे पहले इसका नाम था अजनाभवर्ष। भगवान ऋषभदेव के पिता नाभि, उनके नाम से इस देश का नाम, और जब ऋषभदेव राजा हुए तो अजनाभ वर्ष कहते थे। तो यहाँ अभी नाभि के पुत्र के रूप में भगवान स्वयं भगवान प्रकट हुए, ऋषभदेव। तो इस लोक में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जिसके घर में पुत्र जन्म होता है तो स्वाभाविक है माता पिता का अपने बच्चों के प्रति स्नेह, प्यार, प्रेम प्रगाढ़ होता है। ये संसार का नियम है, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी, कोई भी हो, अपने अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं हम, देखते हैं। लेकिन यहाँ महाराज नाभि के यहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए पुत्र के रूप में, तो उनका जो अपने पुत्र के प्रति स्नेह, ममता या आसक्ति, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या ये बंधन है? नहीं। क्या कहेंगे आप लोग? क्यों नहीं? देखिए, माता पिता का पुत्र के प्रति आसक्त स्नेह है, आसक्ति होना, स्नेह ममता रखना, ये स्वाभाविक है ना? तो हम लोग सुनते हैं मानस में, भगवान राम सबरी को कहते हैं कि तुम्हारा जो सारे संसार में अलग अलग व्यक्तियों के प्रति ममता है ना, वो ममता सभी के साथ जो ममता है, उस ममता को सभी रस्सियों को एक साथ लाके एक मोटी रस्सी बनाओ, एक मोटी रस्सी बना के तुम मेरे प्रति उस रस्सी को बांध दो, अथवा मेरे मुझ में संबंध बढ़ाओ। कैसा है वो चौपाई, किसको याद है? सब करी ममता ताक बटोरी, मम करी ऐसा कुछ है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। मतलब अर्थ समझ गए ना सब? हमारा इस संसार में सबके प्रति जो हमारा ममता है, घर के जो भी लोग हैं, इस सारे ममता के रस्सी को लाके एक मोटी रस्सी बनाना है, ऐसे रस्सी बनाते हैं ना, और ऐसे मोटी रस्सी बना के भगवान के चरणों में और भगवान के साथ उस संबंध को जोड़ना है। तो ये हो गया असली ममता, असली स्नेह। कितना देखिए, यहाँ लिखा है कि ऋषभ देव के प्रति उनके पिता नाभि का बहुत प्रेम था, विह्वल था। अरे क्यों नहीं होगा? जब इस संसार में हम देखते हैं किसी माता पिता का जब पुत्र के प्रति, जबकि ये संबंध अनित्य है, इस जन्म इससे पहले हमारा पुत्र कौन बना था, हम किसके पुत्र बने थे, हम माता पिता कौन बने, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन इस जन्म में जो हमारे गर्भ में, हमारे औरस में, हमारे घर में जन्म हो गया, उसके प्रति हमारा ममता रहता है। लेकिन वही अगर भगवान के प्रति हो, जैसे यहाँ नाभि महाराज का ऋषभदेव के प्रति है, कितना प्रेम विह्वल है, हे मेरे प्रिय पुत्र, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद कहते हैं, ओ माय डार्लिंग, ओ मेरे लाडले, मेरे प्यारे, ऐसे पुकारते हैं, इतना स्नेह ममता। क्या ये माया है? हाँ माया है, लेकिन योग माया है। यहाँ प्रभुपाद भावार्थ में लिखते हैं ना, ये योग माया है। संसार के प्रति हमारा जो संबंध रहता है, हम जिसको इतना मानते हैं और आसक्त होते हैं, वो महामाया है। लेकिन भगवान के प्रति वही आसक्ति हो जाए तो वो योग माया है। और श्रीमद् भागवतम यही शिक्षा देता है, हम लोग वृंदावन में इसलिए आए हैं कि हमारी आसक्ति श्याम सुंदर के प्रति हो जाए, राधा रानी के प्रति हो जाए, है ना। जो भी हमारी आसक्ति संसार में है, जो भी जितने दिन के लिए भी आए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, महीना भर के लिए, या कोई ब्रज में वास करते हैं, ध्येय ये होना चाहिए, लक्ष्य, कि हमारी आसक्ति बिल्कुल राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम के प्रति हो जाए। तो यहां हम देखते हैं कि भले वो चाहे दशरथ महाराज क्यों ना हो, कितने राम के प्रति आसक्त थे ना। भगवान राम वनवास गए, 3-4 दिन, कुछ ही दिनों के बाद अपने पुत्र के वियोग में पिता ने शरीर छोड़ दिया। दशरथ महाराज का राम के प्रति आसक्त होना, नंद यशोदा का अपने बेटे के प्रति आसक्त होना, वसुदेव देवकी का अपने पुत्र के प्रति आसक्त होना, क्या ये माया है? योग माया है। और यही तो हमारा लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय है। समस्त ब्रजवासियों के अपने अपने बेटे थे, सुबल, मधुमंगल, और कौन कौन सखा है, श्रीदाम, ये सभी सखा कोई पेड़ से ऊपर से नहीं टपके थे, माता पिता से आए। लेकिन सभी ब्रजवासियों का सबसे ज्यादा आसक्ति किस में था? कृष्ण में था। तो हम ब्रज में रह रहे हैं तो हमें भी ब्रजवासी बनना है। तो हमारे घर परिवार में जो है सो है, लेकिन उनके साथ साथ सबको हमारा चित्त, हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भगवान कृष्ण में होना चाहिए, तब हम असली ब्रजवासी कहलाएंगे। तो यहां देखते हैं जैसे लेकिन कितने नम्र थे, कितने दयनीय थे। जब वसुदेव के घर में नारद मुनि आए तो नारद मुनि को वसुदेव जी कहते हैं, हे नारद जी, आप तो ऋषि ऋषिवर हैं, देव ऋषि, आप तो घूमते रहते हैं, हम तो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। कौन कह रहे हैं? वसुदेव घर गृहस्थी में फंसे हैं, बताओ फंसे हैं क्या? वसुदेव जी कह रहे हैं हम तो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, बेटा के प्रति आसक्ति है। बेटा कौन है? हाँ, और कृपया हमें बताइए कि इस घर गृहस्थी जंजाल से कैसे मुक्त हो। गर्गाचार्य जी आते हैं ब्रज में नंद बाबा के पास, तो नंद बाबा क्या कहते हैं, महत विचलनम निर्णाम गृहिणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा कोचित। जब गर्गाचार्य जी आते हैं नंद बाबा के यहां, नंद बाबा गर्गाचार्य को प्रार्थना करते हैं, हे भगवन, अर्थात हे गर्गाचार्य जी, हे भगवन, दीन चेतसाम, हम जो घर गृहस्थी के लोग हैं ना, हमारी चेतना बहुत निम्न है, बहुत दीन है, हम लोग बहुत नीच चेतना, क्योंकि हमारा चेतना हमेशा अपना परिवार, घर परिवार में ही रहता है। ऐसे दीन चेतसाम हमारी चेतना इतना दीन है। और गृहिणाम निर्णाम, हम लोग गृहिणाम अर्थात घर में गृहस्थ में रहते हैं। हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि 4 दीवारी के अंदर जो हम लोग रहते हैं उसको गृहस्थ नहीं कहते। अब यहां देखिए आश्रम में भी ब्रह्मचारी भक्त लोग रहते हैं, क्या वो गृहस्थ हैं? वो भी तो घर में रहते हैं। केवल घर में रहने से कोई गृहस्थ नहीं होता है, जब गृहिणी आती है तब गृहस्थ होते। न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणीम गृहम उच्यते। गृहस्थ उसको कहा जाता है जब घर तो है लेकिन घर के साथ साथ जब गृहिणी आती है और फिर संसार बढ़ता है, बच्चे परिवार, उसको गृहस्थ कहते हैं। यहां नंद बाबा कहते हैं गृहिणाम निणाम, हम लोग गृहस्थ हैं इस संसार में, घर गृहस्थी में पड़े हैं, लेकिन आप महत विचलनम, आप जैसे संत महात्मा विचरण करते हैं जगह जगह पे, नगर नगर में, गांव गांव में, घर घर में, गलियों में, क्यों विचरण करते हैं? वो कहते हैं कि निश्रेयसाय कल्याण के लिए, हम जैसे लोगों के कल्याण के लिए, कल्पते न अन्यथा कुचित, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। आप जो ऐसे गली गली में, शहर शहर, गांव गांव में जो घूमते रहते हैं, घर घर, केवल हमारे कल्याण के लिए आप घूमते रहते हैं, हम जैसे गृहस्थ लोग घर में हैं। ये नंद बाबा कह रहे हैं तो हमको क्या कहना है, बताइए। नंद बाबा भगवान के पापा, भगवान के पिता अगर ऐसा कह रहे हैं कि हम घर गृहस्थी में फंसे हैं, आप जो गर्गाचार्य जी आए हैं हमारे उद्धार के लिए, हमारे जैसे लोगों के कल्याण के लिए, नंद बाबा अगर ऐसे कह रहे हैं तो हम संसार में जो गृहस्थ लोग हैं, संसार में रहते हैं, हमारी दशा क्या होती है। महाराज श्री एक प्रवचन में कहते हैं, किसी ने एक छोटा सा क्लिप व्हाट्सएप में भेजा था, उसमें कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जो भक्ति करते हैं व्यक्ति, उनका जो गाड़ी है रफ्तार है ना, कम से कम मिनिमम स्पीड में चलना चाहिए। अब जानते हैं रास्ते में जाते हैं हम लोग, किसी किसी जगह पे लिखा रहता है मिनिमम स्पीड 40, उससे ज्यादा उससे कम नहीं जा सकते, उससे कम जाएंगे तो ठोक देगा पीछे से कोई। तो अपने घर के लोगों को ले दे के, सबको ले के भगवान की भक्ति करना, ये कम बात नहीं, आसान बात नहीं है, हमसे ज्यादा अनुभव आपको है, राइट? क्योंकि कितना भी चाहे कोई अभी बहुत हो गया, आप थोड़े वृंदावन में रहते हैं या कुछ दिन वृंदावन में जाके रहते हैं, लेकिन जैसे ही आते हैं देखिए कुछ दिन के बाद कितना फोन आता है, इसका ऐसा हो गया, उसका वो हो गया, बेटी का ऐसा हो गया, बेटा हो गया, जॉब का, बिजनेस का। अरे कम से कम 7-8 दिन के लिए तो हम कथा सुनने के लिए आए हैं, वृंदावन में बास करने के लिए आए, अभी तो थोड़ा फोन मत करो, ऐसा लगता है, किसी को भी लगता है। इसलिए कहते हैं कि इस रफ्तार में कम से कम चलना चाहिए। तो चाहे भले कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो कितना भी ऐश्वर्य प्रकट करे, जैसे यहां ऋषभ भगवान प्रकट हुए, लेकिन महाराज नाभि का जो प्रेम है वो पुत्र के रूप में ही था, भले जानते थे कि मेरा बेटा भगवान है, लेकिन पुत्र के रूप में था। जैसे ब्रजवासियां या नंद यशोदा जानते थे कि मेरे, कई बार भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया ना यशोदा को, कहां दिखाया बताओ? एक बार दूध पी रहे थे भगवान, कृष्णा बुक में पढ़े हैं भागवतम में, दूध पी रहे थे, छोटे छोटे दंतुलियां बच्चों के होते हैं ना, तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो यशोदा मैया जो है अपने लाला को देख रही थी, और देखे कि दूध पीते पीते उनका मुंह जमाई लेने लगे भगवान, आप लोग मत लीजिए, तो भगवान ने ऐसे जमाई लिए थोड़ा सा, तो यशोदा देख रही है कि उनके लाला के मुंह में पूरा विश्व ब्रह्मांड दिख रहा है। अरे क्या हो गया, ये क्या क्या कौन सा भूत आ गया, ऐसे वो एकदम घबराने लगे। और एक बार जो मिट्टी खाए थे, राइट, भगवान ने जो मिट्टी खाए थे, तो भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया, कितना भी ऐश्वर्य दिखाए, लेकिन यशोदा को ये लगती है तो मेरे लाला है। इसको कहते हैं ब्रज भक्ति जो है ना, प्रगाढ़ प्रेम है, कितना भी ऐश्वर्य का आंच लगे, लेकिन प्रेम सर्दी के मौसम में जमा हुआ घी के समान बिखलता ही नहीं है। द्वारका और मथुरा के परिक्रमों में क्या होता है, थोड़ा सा अगर ऐश्वर्य दिखाए तो बस बस बस, अरे अब तो भगवान है, पिघल जाता है। तो देखिए गीता में 11वां अध्याय में अर्जुन कैसे डर गए ना विश्वरूप को देखे, कहते हैं हम आगे से प्रणाम करते हैं, बाएं से प्रणाम करते हैं, राइट साइड से प्रणाम करते हैं, पीछे से प्रणाम करते हैं, हम तो आपको कभी कभी कंधे पे हाथ डाल दिए हैं, कभी कभी सोते समय, खाते समय, चलते समय ऐसे भी नाम लेके पुकारे हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। हो गया ना कल्याण, पिघल गया अब ऐश्वर्य से। लेकिन ब्रजवासियों का ऐसे नहीं है। गिरिराज धारण करने के बाद आप गोवर्धन लीला सुनिए, भागवतों में वर्णन है, पूरा 7 दिन 7 रात तक भगवान जब गिरिराज जी को धारण किए, सारे ब्रजवासियां चकित हो गए। गिरिराज जी को रखने के बाद एक बार नंद बाबा से सारे ब्रजवासियां के पूछते हैं, अच्छा नंद ये बताओ तेरो लाला कौन है, तुम्हारा पुत्र है जो कृष्ण है कौन है, बताओ सही। मुझे हमें तो लगता है एक तो कोई भगवान ही होंगे, कोई देवता होंगे, क्यों ऐसा भाव क्यों आया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कोई छोटा सा बच्चा 7 दिन 7 रात तक बाएं हाथ के कनिष्ठ उंगली में गिरिराज जी को धारण किए, तो ऐश्वर्य का भाव आया ब्रजवासियों का, सच सच बताओ तुम्हारा लाला कौन है। भागवत प्रमाण है, नंद बाबा ने श्रीमद भागवतम के गर्गाचार्य ने जो उनको नामकरण किए थे, आए थे याद है ना, कृष्ण बलराम को नामकरण किए थे और कहते इनको संभाल के रखो, ये ब्रज की रक्षा करेंगे, इनसे जो प्रेम करेगा उसके जीवन में कभी हार नहीं होगा। ये सब जो श्लोक है ना, सात श्लोक है, ये नंद बाबा ने रिपीट किया। भागवतम में कुछ श्लोक रिपीट हुआ है, और ये देखिए श्रृंखला, जो गर्गाचार्य जिन श्लोकों को बोले थे यहां नंद बाबा ने रिपीट किया कि ये मेरे लाला कौन है। तो सब कुछ सुनने के बाद ब्रजवासियां कहते हाँ, हो सकता है नारायण है ये, हो सकता है कोई देवता है, महान देवता है। थोड़ा समय के लिए ऐश्वर्य आया, लेकिन फिर भी लोग बात कर ले, अरे अगर नारायण होगा तो मक्खन क्यों चोरी करता है, नारायण को कमी है, वो घर में जाके माखन चोरी करता है, अगर फटकार दो तो रोने लगता है, डांट दो तो भाग जाता है। नहीं नहीं, नारायण नहीं होगा, मैंने थोड़ी समय के लिए ऐश्वर्य आया लेकिन फिर कोई प्रगाढ़ प्रेम जो है वो जम गया। और तो आप लोग सुनेंगे ब्रज में तो ये लोग बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, ब्रज के लोग तो इसको मानते ही नहीं कि भगवान है, कहते हैं पता है हमें कैसे गिरिराज जी को धारण किए, कछु माखन सो बल बढ़ी हो, कछु गोपन साथ दे जियो, लाठी लेके दे, श्री राधा जी की कृपा से गिरिवर लियो उठाए, राधा रानी की कृपा से गिरिराज को उठाए, ये नहीं कि इनके पास कुछ अद्भुत शक्ति है कि उठा लिए, कभी भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही जो भगवान के साथ जो भगवान के पिता हैं वो भगवान को कभी भगवान मानते ही नहीं है। तो हम आज देखेंगे कि एक आदर्श परिवार किसको कहते हैं, शास्त्रों में बहुत सुंदर वर्णन है, आदर्श फैमिली किसको कहते हैं, कैसी पिता होनी चाहिए, मां कैसी होनी चाहिए, भाई कैसे होने चाहिए, राजा कैसे होने चाहिए, गुरु कैसे होने चाहिए, पत्नी कैसे होने चाहिए, बेटी कैसे होनी चाहिए, सब कुछ वर्णन है शास्त्रों में। एक सुंदर उक्ति है शास्त्रों में, उसमें वर्णन आता है आदर्श परिवार कैसे होनी चाहिए। परिवार में पहले शुरू करते हैं पिता से, ठीक है, पिता कैसे होने चाहिए, तो शास्त्रकार कहता है कि ऋषभ देव के समान। यहां जितने भी लोग हम बैठे हैं ना, हम किसके पापा हैं, किसके मां हैं, किसके भाई हैं, किसके बहन हैं, किसके बेटी हैं, किसके पत्नी हैं, ये सब इसमें आ जाएगा। अभी ध्यान से सुनिए, आदर्श परिवार किसको कहते हैं, और जितना परिवार के सदस्यों का वर्णन है उसमें से एक भी अगर हमारे जीवन के संपर्क में आ जाए ना, हमारा कल्याण हो जाता है, चाहे वो पिता हो माता हो कोई भी। तो आदर्श पिता की कौन होते हैं, कहते हैं ऋषभदेव के समान पिता होना चाहिए, जो अपने 100 पुत्रों को सामने बिठा के भागवतम क्लास देते हैं। नायम देह देह महाजम न लोके कष्टान कामान अर्हते बीड़ भुजामिये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम ब्रह्म सौखोत्तम अनंतम। भगवान ऋषभदेव अभी आएगा आगे, इसी ऋषभदेव के बारे में वर्णन आता है। अपने पुत्रों को कहते हैं ये मनुष्य शरीर मिला है केवल खाने कमाने के लिए नहीं, खाना सोना बच्चा पैदा करना, बस बस वही 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 रिपीट करना, इसके लिए नहीं है। इसके लिए तो बहुत बॉम्बे पुणे दिल्ली में जाओ बहुत लोग ऐसे, लेकिन मनुष्य शरीर में जो मिला है ये विशेष करके तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, हे पुत्र का हे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर मिला है तपस्या करने के लिए, सुबह उठ के मंगलारती में आने के लिए, जप करने के लिए, भागवतम पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, कार्तिक व्रत करने के लिए, पंचक व्रत करने के लिए, अलग अलग जो हम लोग करते हैं जन्माष्टमी रामनवमी आदि, ये मनुष्य शरीर मिला है दिव्य तपस्या करने के लिए। उससे क्या मिलेगा, ब्रह्म सुख मिलेगा। ये अंदर की बात है, जो करता है उसको पता है, कहते हैं ना बाहर वाले, ये अंदर की बात है, आप लोगों को पता है जो ये करते हैं, इसके लिए मिला है मनुष्य शरीर। ये पिता अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। तो पिता कैसी होनी चाहिए, ऋषभदेव के समान। अब सुनिए मां कैसी होनी चाहिए। महाभारत में एक चरित्र है मदालसा, ऐसी माता है जो अपने पुत्रों को बैठ के सिद्धांत सुना रही है, कहती है संसार कितना नश्वर है, शरीर कितना नश्वर है। मां अपने बेटे को बोल रही है और तो और कहती है कि इस संसार में बेटा कभी भी मत फंसना। स्त्रियों का चरित्र के बारे में बोलती है, एक स्त्री अपने पुत्र को बोल रही है मदालसा, ये महाभारत में चरित्र है। और भी है, हम सुनते हैं माता हो तो सुनीति जैसा है ना, आप यहां जितने भी माताएं बैठे हैं सुनीति को सब जानते हैं ना, ध्रुव की मम्मी सुनीति कैसा माता है देखो, अपने पुत्र को वन में भेज देती है नारायण की उपासना करने के लिए। कौन ऐसे माता होगी अपने बेटे को, जाओ बेटा इस कौन में ज्वाइन हो जाओ, मेरा आशीर्वाद है। कौन होता है बहुत ऐसा, बहुत रेयर है, दुर्लभ है ऐसे, जो अपने पुत्र को बोले ठीक है अब तुम भगवान की भक्ति करो। माता हो तो सुमित्रा जैसा, लक्ष्मण ध्यान आ रहा है रामायण में, लक्ष्मण जब सुमित्रा से आशीर्वाद लेने जाते हैं ना, हिचकते हैं, अगर मैं माँ के पास जाऊं, अगर माँ ने कह दिया नहीं नहीं वनवास तो बड़े बेटे को मिला है ना, तुम्हें थोड़ी मिला है, तुम रुको घर में, नहीं नवेली दुल्हन आई है उर्मिला। लक्ष्मण हिचक रहे थे, मैं माँ के पास जाऊं कहीं अगर उसने रोक दी तो, लेकिन भगवान का आदेश था लक्ष्मण मैं तुम्हें ले सकता हूं एक कंडीशन में, तुम माँ से आशीर्वाद मांग लो। लेकिन देखो धन्य है, रामायण प्रमाण है, सुमित्रा ने आशीर्वाद दी, जहां श्री राम है वो अयोध्या है, मतलब वन अयोध्या है, और ये अयोध्या वन है क्योंकि यहां राम नहीं है। कैसा है वो चौपाई, तात तुम्हार मात वैदेही पिता राम, हे तात हे पुत्र तुम्हारी मां जानकी है, तुम्हारे पिता रघुनाथ हैं। ये एक मां कह रही है अपने बेटे को, असली माता पिता का परिचय दे रही है, तुम्हारी मां जानकी है, तुम्हारे पिता रघुनाथ है, जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद है। 14 वर्ष तक अपने रघुनाथ और जानकी का सेवा करना, और घर की याद मत करना, एक बार इस्कॉन गए तो गए बस, बिल्कुल याद मत करना मैं ठीक हूं, कभी कभी फोन कर देते ना, लेकिन तुम जहां हो उधर ही रहना। मतलब कितना देखो कैसी माता है सुमित्रा इस तरह से। लेकिन कलयुग के माता पिता कैसे हैं, किसने बहुत अच्छा कहा है सुना दूं। एक बेटा अपनी माँ के पास जाते, छोटा सा बेटा 5-7 साल का लड़का, कहते मम्मी आई लव यू, तो मामा कहते देखो 10 रुपया से ज्यादा नहीं दूंगी, मेरे पास इतना ही है, ज्यादा मत मांगना। वही बेटा बड़ा हो जाता है, कॉलेज में पढ़ने लगता है, इंजीनियर पढ़ता है, उसके बाद मम्मी के पास जाता है मम्मी आई लव यू, तो मामा कहती है कौन है कहाँ रहती है नाम बता दो आईडी बता दो मैं बात कर लूंगी। वही बेटा देखो, वही 5 साल का 7 साल का बच्चा तो बड़ा हो जाता है, तो माँ से क्या बोलते हैं और माँ क्या बोलती है कलयुग के जो संबंध है। वही बेटा जब और बड़ा हो जाता है, नौकरी करने लगता है, कहीं अच्छा जॉब लग जाता है, शादीवादी हो जाती है जिसका उसका पसंद है, उसके बाद जाता है मम्मी आई लव यू, तो मामा कहता है कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही बोली थी उससे शादी मत करना, तुमने क्यों बोल मेरी एक सुना तुमने, इस तरह से वो कहती है उसकी मामा। वही पुत्र थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 40-50 साल का हो जाता है, उसके पास कहते हैं मामा रियली आई लव यू, तो माँ क्या कहती है एक भी पेपर पे साइन नहीं करूंगी, हाँ पहले से कह देती हूं देखो। अब ये है माता और पुत्र का कलयुग के मम्मी पापा मम्मी और बेटों का संबंध। लेकिन यहां बताया देखो कैसे, माँ हो तो मदालसा और सुमित्रा जैसा, जब अपने पुत्र को भक्ति करने के लिए भेजती है। पिता माता हो गए, अभी सुनिए भाई, भाई हो तो विदुर के समान, मरते दम तक अंतिम सांस तक अपने भाई को नहीं छोड़े कि इसको तो मैं भक्त बना के ही रहूंगा। एक बार फिर से लौट के आए हस्तिनापुर में, कौन है उनके भाई धृतराष्ट्र, अंधे हो गए बूढ़े हो गए चल भी नहीं पा रहे, फिर भी वही घर में ही पड़े रहे, चलो वृंदावन क्या कर रहे हो, घर ले गए इधर से दिल्ली से उनको ले गए हस्तिनापुर से, और देखो उनका कल्याण हो गया धृतराष्ट्र। भाई हो तो विदुर के समान, ऐसी भाई होने चाहिए। उसके बाद क्या, मित्र, हर एक का मित्र होता है ना, मित्र कैसा हो, कहते हैं प्रहलाद के जैसा। प्रहलाद महाराज ने क्या, देखो उनके जितने भी सहपाठी थे, स्कूल में पढ़ते थे ना, उनके जितने भी सहपाठी थे सब राक्षस के बच्चे थे, और बाप ऐसे हैं तो बेटे कहां से साधु बनेंगे, है ना, सब राक्षस से असुरों के बच्चे थे। लेकिन प्रहलाद महाराज ने देखा, एक बार प्रहलाद महाराज का स्कूल का नाम था संडामर्ग इंस्टीट्यूट, नहीं समझे अभी समझ गए, संडामर्ग विद्यालय, तो संडामर्ग कहीं बाहर गए थे, प्रहलाद ने देखा मौका और छक्का मारा, आओ सब लोग बैठो, हम पढ़ाते हैं। प्रहलाद इतने प्रतिभावान थे, उनके सब सुनने लगे, और राजकुमार थे। बस शुरू कर दिए, सातवें स्कंद का कितना अध्याय है वो? पांचवा अध्याय शायद। प्रहलाद महाराज ने अपनी क्लासमेट्स को सब बोलना चलो, कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मानु भागवता नहीं है दुर्लभ मानुष हो जब, ये सब शिक्षाएं शुरू कर दिया। सारे बच्चे जो है हरे कृष्ण भक्त बन गए, सारे बच्चे। फ्रेंड हो तो, क्लासमेट हो तो, बेस्ट फ्रेंड हो तो प्रहलाद के जैसा, ऐसा फ्रेंड है कि हम सब जो है हमारी सदगति हो, मित्र हो गए। और आगे क्या कहते हैं, गुरु हो तो नारद जैसा, अकिंचन, अपना कुछ नहीं है। नारद मुनि का फ्लैट नंबर क्या है किसको पता है? कुछ नहीं है अपना, वो कहीं भी जाते हैं, किधर भी जाते हैं, मर्त्य पाताल सब जगह पे जाते हैं, उनका हर जगह पे वीसा अलाउड है, कहीं उनको रोक टोक नहीं है। लेकिन जिसको भी एक बार पकड़ते हैं ना, बन के ही रहता है ना। नारद मुनि ने किसको भक्त बनाया बताओ? एक एक का नाम भागवतम में है कि नहीं? ऐसा ऐसा डिसाइपल बनाया कि प्रहलाद, ध्रुव है ना। एक पिता ने 10,000 पुत्रों को भेजा था, बेटा जाओ शादी करने के लिए, थोड़ा तपस्या करके आओ। तब तक नारद मुनि मिल गए, कहां जा रहे हो? तपस्या करने के लिए। किसने कहा? पापा ने कहा। किस लिए तपस्या करेगा? शादी करना है। अच्छा इधर आओ। और उन्होंने 10 पहेली बताए भागवतम में ना, छठे स्कंद में 10 पहेली बताए, इस प्रश्नों का उत्तर दो उसके बाद शादी करोगे। और उस प्रश्नों के उत्तर में ही वो समझ गए, सबके सब वन टाइम प्रोग्राम में हरे कृष्ण डिवोटी बन गए। 6 सेशन जरूरत नहीं, और एक बार में सब भक्त बन गए। नारद मुनि का ऐसा प्रीचिंग है, बस एक बार ही बोलते हैं, बार बार बोलते नहीं, बस एक बार। गुरु हो तो नारद के जैसा, खुद अकिंचन है लेकिन सबको बेड़ा पार करा देते हैं। और क्या कहते हैं, पुत्र हो तो कपिल के समान है ना, पुत्र हो तो कपिल के समान, जो माता को अपने सांख्य शास्त्र, सांख्य दर्शन शिक्षा दे के इस संसार से उद्धार कर दिए। सुने ना तीसरा स्कंद, कपिल भगवान पुत्र अपनी मां को उपदेश दे रहे हैं। इतना सुंदर उपदेश है कि श्रील प्रभुपाद जी ने कपिल शिक्षा के ऊपर लंबा चौड़ा प्रवचन दिए हैं, पुत्र हो तो कपिल के समान। फिर क्या कहते हैं, पत्नी हो तो द्रौपदी के जैसे। वैसे कई हैं लेकिन चुने हुए जो है ना, सिलेक्टेड लोगों का नाम लिया गया है। पत्नी हो तो द्रौपदी के जैसा है, कैसे? ज्यादातर हम जो ये जो आजकल टीवी सिनेमा में या मीडिया में दिखाए, द्रौपदी को ऐसा दिखाते हैं कि मानो कि झांसी की रानी है, एकदम योग माया, जो या देवी सर्वभूतेषु, जिसके वजह से महाभारत हो गया और इतना बड़ा ध्वंस हो गया। लेकिन वास्तव में भागवत या महाभारत को ठीक से पढ़ेंगे ना, द्रौपदी इतने झांसी की रानी नहीं थी, मतलब इतना उसमें सद्गुण है। अरे बताओ, भगवान जिसको अपना बहन मानते हैं वो कैसी होगी? कई प्रसंग में द्रौपदी का सद्गुण निखर आता है, दया क्षमा की मूर्तिमान स्वरूप है, भगवान के ऊपर इतना अटूट विश्वास है, अपने सतीत्व अपने पतिव्रता के बल से अपने पतियों को दासत्व से मुक्त कर दिया, राइट? सो पति लोग दास बन गए थे ना जुआ खेल में, लेकिन द्रौपदी ने जैसे उस समय अंतिम समय भगवान को पुकारे कि हे द्वारिका वासिन, गोविंद द्वारिका वासिन, कृष्ण गोपी जन प्रिया, कौरवे परिभूतामा, किम न जानासि केशव, हे नाथ हे रमानाथ, ब्रजनाथातिनाशनम, कौरवार्णव मग्ना, मामुद्धरस्व जनार्दन, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, विश्वात्मन विश्वभावना, प्रपन्ना पाहि गोविंद, मामुद्धर कुरु मध्ये अवसीदति। ये 3-4 श्लोक बोलने के बाद भगवान झट से आ गए, गोविंद द्वारिका वासिन, कृष्ण गोपी जनप्रिय। क्या सुंदर भगवान का नाम पुकार रहे हैं। और भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी। केवल इतना नहीं, एक बार दुर्वासा मुनि आ गए वन में, आपके इस काम्यक वन में ही आए थे ना दुर्वासा जी, और अकेले नहीं, अपने पूरे डिसाइपल सब 10,000 डिसाइपल के साथ। और उस समय द्रौपदी ने भोजन करके जो अक्षय पात्र था ना उसको साफ करके रख दी थी। एक बार द्रौपदी खाने के बाद बस हो गया, फिर अगले दिन फिर से शुरू हो जाएगा भंडारा। बराबर ठीक समय में दुर्वासा जी पहुंच गए, दुर्योधन ने भेजा था, सुने है ना वो स्टोरी। लेकिन सारे पांडव जो है एकदम भयभीत हो गए। महाभारत में लिखा है, साक्षी है महाभारत, युधिष्ठिर महाराज ने कहा भीम लकड़ी लेके आओ। लकड़ी लेके आना है क्या, चूल्हा लगाना है, कब बनाएंगे चूल्हा और भोजन कब बनेगा और ये 10,000 शिष्य कब खाएंगे। लकड़ी चूल्हा के लिए नहीं बोला हूं, लकड़ी लेके आओ, हम सारे के सारे आत्महत्या कर देंगे। क्योंकि दुर्वासा की कोप से जलने से बजे हम खुद ही आत्महत्या कर लेंगे। दुर्वासा जी इतने साधारण महात्मा नहीं है, हम आत्महत्या कर लेंगे, अब बचने वाले नहीं है हम, तो उसी दिन सर्वनाश हो जाता। लेकिन द्रौपदी कितनी महान भक्त थे, देखो कहे अपनी पतियों को बोल रही है, क्या कृष्ण कहीं चले गए। अब ध्यान रखिए, कृष्ण उनके साथ नहीं थे, कृष्ण द्वारिका में थे। महाभारत के एक बहुत सुंदर टीकाकार नीलकंठ आचार्य कहते हैं, उस समय कृष्ण द्वारिका में रुक्मिणी जी भगवान को भोजन परोसी, और भगवान आचमन करके, आचमन करते हैं ना भोजन से पहले, आचमन करके मंत्र उच्चारण करके वो भोग ग्रहण कर ही रहे थे। भोग को भगवान अभी ग्रहण करने ही वाले थे तब तक द्रौपदी ने उधर पुकार ली। क्या क्या सीन है ना, भगवान अभी बैठे हैं द्वारिका में, भगवान वहां नहीं है, लेकिन द्रौपदी क्या पत्नी हो तो द्रौपदी के जैसा संकट से उबारी। द्रौपदी ने कहा कि क्या आप लोग भूल गए, क्या कृष्ण कहीं संसार से चले गए, आज भी है अभी भी है। तो पांडवों ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज ने कहा द्रौपदी तुम्हारे जैसी पत्नी पाके हम धन्य हो गए। हम सब शास्त्र जानते हैं, सारे वेद उपनिषद जानते हैं, लेकिन तुम जैसे करुण स्वर में पुकारती हो अपने कृष्ण को, हमारा वो करुण स्वर नहीं है। इसलिए द्रौपदी ने करुण स्वर में पुकारी, ऐसे ही जैसे गुरु सभा में पुकारी थी। और भगवान रथ में, प्लेन में या ट्रेन में नहीं आए, पकड़ प्रकट हो गए झट से। मैं द्वारिका से काम्यवन आने के लिए टाइम लगेगा ना, देखो द्रौपदी की पुकार, भगवान झट से प्रकट हो गए और कहने सखी सखी, अरे बड़ी जोर से भूख लगी है, लाओ तो कुछ मुझे खाने को दो। क्या कहें, द्रौपदी कह रहे सखा मजाक कर रहे हो, परिहास करने के लिए और कोई समय नहीं मिला, हम लोग अभी मरने वाले हैं इसलिए हम पुकारे हैं आपको, और तुम कह रहे हो कि सखी कुछ भोजन है तो दो। इसको कहते हैं दृढ़ विश्वास। क्या कृष्ण उनके घर में थे, आज भी हमारे पास नहीं है, लेकिन नाम तो हमारे पास है ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। द्रौपदी ने भी भगवान का नाम पुकारा, जैसे ही कृष्ण आए और कहे कि नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में मुझे भूख लग रहा है, कहां है तुम्हारा वो अक्षय पात्र, वो बर्तन लेके आओ। देखो महाभारत में लिखा है उस बर्तन को द्रौपदी ने साफ कर दी थी, और द्रौपदी आजकल के जैसा नहीं थी कि थोड़ा सा लग गया कहीं, भीम बार है ना लग गया थोड़ा सा कहीं चुटपुट थोड़ा सा अन्न लग, बिल्कुल द्रौपदी जैसे स्त्री ऐसे साफ नहीं करेगी, बिल्कुल साफ कर दे। भगवान अपनी शक्ति से अपनी योग माया के प्रभाव से उस बर्तन में थोड़ा सा एक साग का पत्ता रख दिए। द्रौपदी जैसे लेके आई तो भगवान ने ये तो है ना, और भगवान ने लिया इधर सब द्वादशी पारणा सबका सब एकदम डकार आने लगे, पारणा हो गया सबका, भागने लगे दुर्वासा एंड कंपनी, नहीं तो मरेंगे ना, इतना कौन खाएगा, तो सब भाग गए। सब पत्नी हो तो द्रौपदी के जैसा, हर समय सुख में दुख में अप्स एंड डाउन्स में हमेशा पति के साथ देती हो। और आगे कहते हैं पति हो तो अम्बरीश महाराज जैसा, अपनी छोटी रानी को भक्ति का शिक्षा दे दिए। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज एक सुंदर घटना किए थे, मुझे बहुत याद आ रहा है, कहते हैं महाराज कि अम्बरीश महाराज सारी सेवाएं खुद करते थे, मंगल आरती से लेके आरती प्लेट सजाना, तुलसी आरती करना, नृसिंह वंदना बोलना, श्रृंगार की सारा सामान लेना, गंगा जल लाना, पानी लाना, श्रृंगार करना, ड्रेसिंग करना, गहना पहनाना, भोग लगाना, सारी सेवा खुद करते थे। एक दिन अम्बरीश महाराज बीमार हो गए। उनकी पत्नी जो है इतनी पतिव्रता थी, कभी भी पति को ऊंचे आवाज में बोलने के तो दूर तो सामने भी कभी ऐसे नजर उठा के देखने, अम्बरीश महाराज सारी सेवा खुद करते थे। पत्नी सोची कि आज तो हमारे पतिदेव लेट हो गए, मंगल आरती आए नहीं, बहुत बीमार हो गए, चलो मैं सब कर देती हूँ। तो उन्होंने क्या की, मंगल आरती का प्लेट सजाना, तुलसी का सजा के रखना और सारे सारे जैसे श्रृंगार करने के लिए सामग्रियां रखना, सब 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 तैयार करके रख दी। इधर अम्बरीश महाराज उठे, अरे आज तो लेट हो गया, मैं तो कभी लेट नहीं हुआ आज, चलो चलो झटपट स्नान करके, थोड़ा उस दिन बुखार हो गया था, बीमार हो गए थे, झटपट स्नान करके जैसे ही ठाकुर जी के घर में गए, सब कुछ रेडी, सब कुछ तैयार था, बस इनको बस ड्रेसिंग करना बाकी था। अम्बरीश महाराज आश्चर्य हो गए, मैंने कभी भी किसी दासी को भी नहीं बोला कि मेरी कुछ सेवा में मदद करो, ये सेवा कौन किया, कौन है इधर? तो चक्रवर्ती सम्राट थे, सब लोग डर गए, और उनकी पत्नी ही थी उधर, कौन है इधर? तो उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज मैं आपकी दासी हूं। कौन सी दासी हो तुम? मतलब पत्नी को भी इतना नहीं जानते, इतना सेवा में तल्लीन थे, अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानते। और पत्नी भी कैसे देखो, मतलब बिल्कुल पतिव्रता, मैं आपकी दासी हूं, मैंने आपकी सहायता की, मैं देखा आप आज सवेरे नहीं उठ पाए, अस्वस्थ हैं, इसलिए मैंने सब तैयार करके रखी। तो अम्बरीश महाराज, नहीं नहीं मैंने तो किसी को सेवा नहीं दी, आपने क्यों किया ऐसा? तो वो बेचारी सिर को नीचे करके रह गई। लेकिन जब पास में बुलाए तो उनकी ही पत्नी अपने आंचल से एक खंजर निकाले, एक छुरा, छोटी सी तलवार, वो अपने पति को दी, अम्बरीश महाराज को। अम्बरीश महाराज पहचान लिए, शादी के समय, विवाह के समय ऐसी एक प्रथा है कि वो विवाह के समय उनको वो दिए थे, तब वो पहचानी, अरे ये तो मेरी पत्नी है, अभी तक मैं इसको ध्यान ही नहीं दिया, बताओ कैसे पति है और कैसी पत्नी है। देखो पति हो तो अम्बरीश महाराज जैसा, और राजा हो तो पृथ्वी जैसा, राजा हो तो पृथ्वी महाराज, सुने ना पृथ्वी महाराज अपने प्रजाजनों के दुख को दूर करने के लिए पृथ्वी के ऊपर भी बाण चला दी, और केवल वो अनाज, खाना पीना, रहना, मकान, कपड़ा ये नहीं देते थे, धर्म का उपदेश दिए, पृथ्वी महाराज ने ज्ञान दिया। और बेटी हो तो करौली की राजकुमारी जैसा, करौली में देखे ना, अपने भक्ति के प्रभाव से मदन मोहन को अपने घर में ले आए, सुने करौली गए हैं मदन मोहन जी के, उनके पिता ने मदन मोहन जी के कई सेट रख दिए सामने, बेटी ने कहा कि अगर मैं ब्याह ही जाऊंगी दूसरे के घर में तो दहेज में ये मुझे चाहिए। तो पिताजी नहीं चाहते थे कि मदन मोहन को देने के लिए, बेटी को कहे कि तुमको अगर अपना मदन मोहन चाहिए तो चुन लो इसमें से कौन सा है, बिल्कुल मदन मोहन के जैसा ही कई विग्रह से रख लिए, जयपुर गए करौली। तो राजकुमारी जो थी इतने इतना भक्त थे भगवान की, प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर जी, हे मदन मोहन, सही में अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ और आपको मैं अपने साथ में रखना चाहती हूँ तो मेरे नजरों के सामने आप आ जाइए। जितने भी विग्रह रखे थे मदन मोहन जी के, बराबर जो असली मदन मोहन थे ना, जो राजकुमारी जब उनके सामने आई, मदन मोहन जी के मुकुट थोड़ा सा हिल गया, थोड़ा सा इंडिकेशन दे दिए, बस पकड़ लिए वो और मदन मोहन जी को ले लिए। तो ये है असली परिवार, पिता ऋषभदेव जैसा, माता मदालसा सुमित्रा या सुनीति जैसा, भाई विदुर के जैसा, सखा प्रहलाद जैसा, गुरु नारद जैसा, पुत्र कपिल जैसा, पत्नी द्रौपदी जैसा हो, पति अम्बरीश महाराज जैसा, राजा पृथु जैसा, और पुत्री हो तो करौली के राजकुमारी, ऐसे अन्य कई भक्त हैं। तो ये हमारा असली संबंध, असली परिवार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।